أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. اے ایمان والو، تم اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو. صدق اللہ العظیم و صدق رسول الکریم و صدق المہدی المعود العظیم. فرائض ولایت میں اہم ترین فرض جو اصل اصول ہے ذکر اللہ اور طلب دار خدا، اس میں سے ذکر اللہ کہ باپ کا جو ہے آغاز کیا گیا ہے دو ہفتے پہلے، تو یہ غالباً تیسری نشست ہے ذکر اللہ کے اوپر. امام مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ذکر دوام 24 گھنٹے کے ذکر کو ہم پر فرض فرمایا ہے، کہ اس کی تفصیل ہم جو ہے سنی ہے. ذکر اللہ کے تعلق سے جو ہے آپ نے اس کی جو فضیلت کے تعلق سے جو قرآنی آیات ہیں اور جو احادیث ہیں اور اسلام کے نقلیات ہیں، کسی قدر جو ہے ہم نے اس بارے میں سنا ہے. اور پچھلی نشست میں جو افضل ترین جو ذکر ہے، جو لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے، جس کو میں اسلام نے اللہ کے حکم سے الا اللہ تو ہے اور لا الہ نہیں کے طریقے سے ہمیں بتایا ہے، اس تعلق سے بھی جو ہے آپ نے تفصیل سنی ہے. صبح و شام کی جو اہمیت ہے اس تعلق سے بھی جو ہے آپ نے تفصیل سنی ہے. مزید کئی چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا ہے انشاءاللہ. جو ہمارے پاس جو سانس کا بھی جو ذکر کا طریقہ ہے، جو سانس کی جو فضیلت ہے، وہ بندگی میں سیدنا شاہ خودی صدیق ولایت رضی اللہ کے رسالے سے، اس میں کا ایک ایکسٹریکٹ ہے جو آپ کے سامنے جو ہے پڑھ کے سنایا جائے گا. اس سے پہلے ذکر دوام دیکھیے، یہ جو 24 گھنٹے کا ذکر ہے، یہ بات چیت کرتے ہوئے، کھاتے پیتے، ہر چیز کرتے ہوئے کرنا ہے جو ذکر ہے. اور ذکر دوام ایسے ہی حاصل نہیں ہوتا ہے. امامنا مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ذکر کثیر کے برکت سے ذکر دوام عطا کرتا ہے. ذکر کثیر کی برکت سے ذکر دوام عطا کرتا ہے. تو قرآن میں ذکر دوام کے بارے میں بھی آیا کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر کرو. اور ابھی جو آپ کے سامنے آیت تلاوت کی گئی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یہ ایک الگ ہے. مطلب اے ایمان والو، اللہ کا کثرت سے ذکر کرو. تو جب کثرت سے ذکر کریں گے اللہ تعالیٰ کا، شدت کے ساتھ، کثرت کے ساتھ جو ذکر کیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ذکر دوام عطا کرے گا، ہمیشہ کا ذکر عطا کرے گا. تو آپ کو کرنا ذکر کثیر ہے، اس کے طفیل میں ذکر دوام عطا ہوگا. یہ آپ کے سامنے اس واسطے لکھ کے لگایا گیا ہے ذکر کثیر، امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی یہ دائرے کا عمل ہے. آج ہمارے واسطے تقریباً جو ہے امپوسیبل ہے، لیکن ہمیں معلوم کرانے کے واسطے، بچوں کو جو ہے، بڑوں کو، سب کو جو ہے واقف کرانے کے واسطے کہ میں اسلام کے دائرے کا کیا طریقہ تھا، ذکر کثیر امامنا نے کس کو کہا. اب دیکھیے جی، اللہ نے تو کہہ دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اسے جو ہے کثرت سے یاد کرو. اب ہمیں کیا معلوم کہ کثرت کیا ہے، آدھے سے زیادہ تو آپ کو جو ہے اندازہ کر سکتے ہیں، لیکن کثرت کسے کہتے ہیں، ذکر کثیر کسے کہتے ہیں؟ تو یہ وہی شخص بتا سکتی ہے جو مراد اللہ ہے، وہی ذات ہمیں بتا سکتی ہے جو مراد اللہ ہے، جو اللہ کی مراد ہے، جو اللہ چاہ رہا ہے، جو اللہ کے پاس جس کو ذکر کثیر کہا جا رہا ہے، وہ سوائے خلیفۃ اللہ علیہ السلام کے اور کوئی نہیں بتا سکتا، خاتم السلام کے سوا. تو بہرحال امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے ذکر کثیر کی ترتیب اس طرح سے بتائی ہے، یہ جو آپ کے سامنے جو لکھ کے لگایا گیا ہے، میں اسلام نے ذکر کثیر کی ترتیب اس طرح سے بتائی ہے کہ انصاف نامے کی روایت ہے کہ اول فجر سے دیر پہر دن چڑھے تک، پہلے جو ہے اول فجر سے طلوع آفتاب تک، سٹارٹ آف فجر ٹل سن رائز، وہاں سے جو ہے آپ کو صبح طلوع آفتاب تک، یہ تمام تارکان دنیا جو ترکی دنیا کر کے میں اسلام کے پاس آ کے دائرے میں رہتے، وہ لوگ جو اس طرح سے پابندی کرتے تھے، یہ ان کے اوقات ہیں کہ اول فجر سے طلوع آفتاب تک، سن رائز ہوا تک جو ہے ذکر اللہ ہمیں جو ہے بیٹھتے. اور یہ اول فجر، یاد رکھیے، یہ جو فجر کا ٹائم جو سٹارٹ ہو رہا ہے، ہم جو ذکر کرتے وہ نہیں، فجر کی نماز جماعت سے پڑھی اس کے بعد آدھا گھنٹہ جو ذکر کر رہے ہیں وہ نہیں، بلکہ فجر کا ٹائم جو جنتری میں، جو تقویم میں، کیلنڈر میں جو سٹارٹ ہوتا ہے، وہاں سے جو ہے طلوع آفتاب تک، جو پہر، اس وقت جو ہے پہر کیلکولیشن ہوتا تھا، گھنٹے نہیں، 8 پہر مطلب 24 گھنٹے، 1 پہر 3 گھنٹے کا ہوتا، تو آدھا پہر جو ہے اول فجر سے طلوع آفتاب تک ذکر میں بیٹھتے، جو 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے، 1.5 گھنٹہ وہ لوگ جو ہے صف میں جانماز میں ذکر اللہ میں بیٹھتے. اس کے بعد پھر حجروں میں جا کے तुलू के बाद से जो है डेढ़ पहर दिन चढ़े तक। अब समझिए कि 6 बजे जो है तुलू है, तो पहले 4:30 बजे से 6 बजे तक जो है जाय नमाज पे जो है मस्जिद में बैठती, उसके बाद हुजूरों में जाके 6 बजे से डेढ़ पहर तक, 6 बजे से 4:30 घंटे, 10:30 तक अपने अपने हुजूरों में जिक्रुल्लाह में बैठती फुकरा इकराम। फिर उसके बाद से वहां से जोहर तक गैप, वो वक्फा वही छे 10:30 बजे से जोहर तक गैप वो वक्फा। उसके बाद जोहर से असर तक फिर जिक्रुल्लाह में बैठा जाता, जोहर की नमाज पढ़े और फिर जिक्रुल्लाह में बैठा था 1 पहर, मतलब 3 घंटे ये लोग फिर जिक्रुल्लाह में बैठते। फिर असर से मगरिब तक बयान कुरान होता, अगर बयान कुरान नहीं तो फिर जिक्रुल्लाह में बैठना। और फिर मगरिब से ईशा तक, असर से मगरिब तक आधा पहर, मगरिब से ईशा तक आधा पहर, आधा आधा पहर डेढ़ डेढ़ घंटा 3 घंटे फिर जिक्रुल्लाह में। उसके बाद फिर नौबत थी हमारे पास कि जो है तमाम फुकरा इकराम को जो है जमात जमात जो है बनाई जाती, 3 टुकड़े बना दी जाती, हर टुकड़े जो है 3-3 घंटे रात में जो है जिक्र में बैठती, बाकी के जो है सोते, जिनकी बारी आती फिर वो तस्बीह देने के पर उठते और वो लोग जो है जिक्रुल्लाह में बैठ जाते। इस तरह 5 पहर जिक्र करने को जो 15 घंटे होते हैं उसको मैं इस्लाम ने जिक्र कसीर फरमाया, मैं इस्लाम ने 15 घंटे जिक्र करने को जिक्र कसीर फरमाया, ये याद रख लीजिए आप। इमाम इस्लाम के पास जो है जिक्र कसीर ये है। आज हम तो जो है किधर की है, इमाम इस्लाम ने जो है इन वक्तों की जो है बड़ी जो है ताकीद की है। फुकरा कराम के वास्ते था, कासिबीन के वास्ते भी जो जिक्रुल्लाह के जो औकात हैं उसमें भी जो है 2 वक्त खास है, सुल्तानुल लैल और सुल्तानुल नहार। सुल्तानुल लैल अव्वल फजर से तुलू आफ्ताब तक है सुल्तानुल नहार, और सुल्तानुल लैल असर से ईशा तक है। अब देखिए जी हम कहाँ से किधर आ चुके हैं। इमामुना मेहदी मौत अलैहिस्सलाम की कौम जहाँ पे जो है जिक्रुल्लाह जान है, ये सब कुछ है, वही शख्स कामयाब है जिसने जो है वक्त की कदर की, अपनी हयात की, अपनी जिंदगी की कदर की, वही शख्स कामयाब है जिसने जो है अपनी सांस की कदर की। इंशाल्लाह जो है आप सांस के ताल्लुक से जो रिवायतें हैं वो सुनेंगे और यकीनन जो ईमान वाला है वो हिल जाएगा। जो चंद अहादीस हदीस कुदसी एक तो आपके सामने जो आखिर में पेश की जाएगी वो आप सुनेंगे सांस के ताल्लुक से। तो बहरहाल ये जो है बताने के वास्ते कि ये हमारे पास का तरीका, ये हमारी तारीख है, आज सिर्फ तारीख है हमारे वास्ते, ये हमारे बुजुर्गान दीन के जो है तरीका रहा है। उसके बाद कम से कम जो है ये होता था कि सुल्तानुल लैल और सुल्तानुल नहार की सख्ती के साथ पाबंदी की जाती, अव्वल फजर से तुलुए आफ्ताब तक 1.5 घंटा, असर से मगरिब तक, मगरिब से ईशा तक 1.5 घंटा, 3 घंटे जो बैठते बैठते, क्योंकि इमामना मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने इसके ताल्लुक से काफ़ी जो है शदीद ताकीद की है। वो रिवायतें जो है आपके सामने पढ़ के सुना चाहूँ, क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए कि सुल्तानुल लैल और सुल्तानुल नहार 2 अहम तरीन वक्त है। ये मतलब सुल्तान मतलब बादशाह है, लैल का बादशाह असर से ईशा तक जो रात शुरू हो रही है, असर से जो पूरा सुबह तक जो रात है उसका जो बादशाह है, वक्त का जो बादशाह है वो असर से ईशा तक का वक्त है, और जो दिन का बादशाह है वो अव्वल फजर से तुलू आफ्ताब का वक्त है। ये इतना अहम तरीन वक्त है कि इसके ताल्लुक से देखिए जो रिवायतें आई हैं हाशिए सामनामे से जो है आपके सामने रिवायत पढ़ रहा हूं कि नकल है कि असर से ईशा तक और आखिर शब से सुबह तक, यानी जो अव्वल फजर का जो वक्त है उसे सुबह तक रहमत का वक्त है, ये दोनों वक्त किसी वली और उम्मत नबी को माफ ना थे। उस वक्त इस वक्त बहिश्त निदा करती है, यानी जन्नत आवाज देती है, ये 2 वक्तों में जन्नत आवाज देती है। तो फरिश्तों को खुदाए ताला का फरमान होता है, देखो जन्नत क्या कहती है। अल्लाह हर चीज से वाकिफ है, फरिश्तों को वाकिफ कराना जा रहा है, ये रिवायत हम तक जो है लाना जा रहा है। ये 2 वक्त खास वक्त है, रहमत के वक्त याद रख लिए, और इस वक्त में जो है जन्नत आवाज देती है, निदा करती है, पुकारा करती है। तो अल्लाह हुक्म देता है फरिश्तों को, जो पूछो कि जन्नत क्या कहती है, फरिश्ते जन्नत से पूछते हैं कि क्या कहती है, जन्नत जवाब देती है कि जो अशखास यानी जो बंदगाने खुदा इस वक्त खुदा को याद करते हैं वो मेरे पास रहने वाले हैं, खुदा से कहो कि उनको हमारे हवाले कर। फरिश्तों को फरमान खुदा होता है कि दुनिया में जाकर देखो और इस वक्त जो हमारी याद करते हैं उनके नाम लिख कर लाओ। फरिश्ते दुनिया में आते हैं और जो बंदे खुदा की याद में हैं, खुदा की याद करते हैं, उनके नाम लिखकर खुदा ताला के पास ले जाते हैं। तो फरमान खुदा होता है कि बहिश्त से कहो, इन्हें जन्नत से कहो कि ये लोग तेरे पास आने वाले हैं, जब मैं उनको दुनिया से उठा लूंगा तो तेरे पास भेजूंगा। तो जन्नत को भी जो है ये वक्त मालूम है कि जो है अव्वल फजर से तुलू आफ्ताब तक, सनराइज तक का जो वक्त है بہت ہی رحمت کا وقت ہے، اور عصر سے عشاء تک کا وقت جو ہے بہت ہی رحمت کا وقت ہے. پھر آگے نقل ہے کہ یہ دونوں وقت کسی نبی اور کسی ولی اور امت کے لیے معاف نہ تھے، یعنی عصر سے عشاء تک اور آخر شب سے دن چڑھے تک، پہر دن چڑھے تک، یہ وقت رحمت کا ہے. اب دوزخیں فریاد کرتی ہے، دوزخ بھی جو آواز دیتی، جنت آواز دے رہی ہے، تو دیکھیں یاد رکھیے دوزخ بھی آواز دے رہی ہے. فرشتے، خدا تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے فرشتوں کو کہ دوزخ، دوزخیں کیا شور کرتی ہے، دوزخ دیکھیے شور کر رہی ہے. تو فرشتے دوزخ سے پوچھتے ہیں کہ تو کیا چاہتی ہے؟ دوزخ کہتی ہے جو میرے پاس رہنے والے ہیں ہم کو دے. فرشتے خدا تعالیٰ کے پاس جا کر عرض کرتے ہیں کہ دوزخ اپنے پاس آنے والوں کو طلب کرتی ہے. فرشتوں کو فرمان خدا ہوتا ہے کہ دنیا میں جا کر دیکھو کہ اس وقت کون ہم کو بھول گئے ہیں اور ہمارا ذکر نہیں کرتے، غافل ہو گئے ہیں اور دنیا میں مشغول ہیں، ان کے نام لکھ کر لاؤ. تو فرشتے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت کون خدا کی یاد سے غافل اور دنیا میں مشغول ہے، ان کے نام لکھ کر لے جاتے ہیں، خدا سے عرض کرتے ہیں. فرمان خدا ہوتا ہے دوزخ سے کہو کہ یہ تیرے پاس آنے والے ہیں، ان کے انتقال کے بعد میں تیرے پاس بھیجوں گا. اس وقت دوزخ خاموش ہوتی ہے، جب تک دوزخ پکارا کرتی ہے، ادھر جنت بھی آواز دے رہی ہے اور ادھر دوزخ بھی آواز دے رہی ہے. دیکھیے جی اتنا اہم ترین وقت ہے. اب وہ سلطان لیل سلطان نہار بھی جا کے ہمارے تصور میں تو جو ہے صرف اتنا بیٹھا ہوا ہے کہ فجر کے بعد سے طلوع آفتاب تک آدھا گھنٹہ، عصر کی نماز کے بعد سے مغرب تک آدھا گھنٹہ، وہ بھی چنندہ اشخاص کے واسطے ہو چکا ہے. ہم ذکر اللہ جو اتنی بڑی چیز ہے ہمارے واسطے، یہ تمام یاد رکھ لیا، تمام احکام خداوندی میں جو اللہ تعالیٰ کے جو تمام حکم ہیں، جو تمام جو فرائض ہے، اس میں سب سے اول فرض، سب سے بڑا فرض ذکر اللہ، سب سے اہم ترین فرض ذکر اللہ یاد رکھ لیجئے، اور مہدویت کی جان ذکر اللہ. ہم امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے پاس بغیر ذکر کے مہدوی ہو ہی نہیں سکتے، بغیر ذکر اللہ کے جو ہے چارہ ہی نہیں ہے. جو چیز فرض تھی، اتنا فرض اللہ نے جو ہے اس کو اتنی شدت سے بیان کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکراً کثیرا کہا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے جب تم نماز ادا کرو تو اللہ کا ذکر کرو، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے. ہم نماز پڑھ کے جو ہے سمجھ رہے ہیں کہ ہم احسان کر دیے، وقتی فرض پانچ دس منٹ کا ادا کر کے ہم سمجھ رہے ہیں احسان کر دیے، حالانکہ ہم تو پیدا محض اسی واسطے ہوئے کہ خدا تعالیٰ کی عبادت کریں. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے نہیں تخلیق کی جنات اور انسان کی مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں. ہم صرف پیدا اسی لیے کیے گئے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی بندگی کریں. سچ ہے، خدا تعالیٰ نے جو ہے اس کے ساتھ، اس زندگی کے ساتھ جو ہے کئی چیزوں کو جو ہے آزمائش کے لیے لگایا ہے، نوکری چاکری، بھوک پیاس، کپڑے، مکان، بیوی بچے، یہ ذمہ داریاں اللہ نے صرف آزمائش کے واسطے لگائی. ان ذمہ داریوں سے گزرنا ہے خدا کو یاد کرتے ہوئے، جس مقصد کے واسطے پیدا ہوئے، اس کو، جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے اس کو بھول کر اگر ان کاموں کے پیچھے رکھ جاؤ گے جو تجھے صرف آزمائش کے واسطے جو ہے تمہیں دیے گئے ہیں، تو یقیناً جو ہے جو دوزخ کی آواز دے رہی ہے اس کے حوالے کیے جائیں گے. کیونکہ میں اسلام فرماتے ہیں ذکر کثیر کے بغیر نجات نہیں، اسلام کا صاف فرمان بھی یاد رکھیے، ذکر کثیر کے بغیر نجات نہیں، جو کثرت ذکر کرنا ہے اس کے بغیر نجات ہی نہیں ہے. آج وہ جو فرض تھا ذکر اللہ، آج جو ہے مستحب عمل ہو چکا ہے ہماری قوم میں، ہماری قوم میں مستحب مطلب ہم سمجھتے ہیں مستحب مطلب جو کرے تو ثواب، نہیں کرے تو کچھ نہیں، یہ ہو گیا ہمارے پاس. اس کا تصور اتنا گرا ہے، مطلب ہم اتنی پستی میں گرے ہیں، اتنی پستی میں گرے ہیں. جو فرض ہے، جو خدا کا حکم ہے، جو خدا کا حکم ہے، وہ جا کے اتنا نیچے گرا ہے کہ اب ہم سمجھ رہے ہیں اگر ذکر اللہ کر لیے تو ثواب، نہیں کرے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، پکڑے جائیں گے خدا تعالیٰ کے پاس. اسلام کا آنا تو جو ہے اسی واسطے ہوا ہے، اسلام کی تصدیق تو جو ہے یہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور خدا تعالیٰ کو حاصل کریں، اتنا ہی میں اسلام کا جو ہے یہی ہے. اگر ہم ذکر اللہ کو اگر چھوڑ دیں گے تو آپ لاکھ دعوے کر لیں اپنے مہدوی ہونے کے، مہدی موعود علیہ السلام کے پاس جو ہے مہدوی نہیں ہو سکتے. اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے جو ہے یہ باتیں کہہ رہا ہوں، بڑی بڑی باتیں کہہ دی جا رہی ہیں لیکن روایتوں کے ساتھ ہے، یہ حقیقت ہے، کڑوی ہے لیکن حقیقت ہے. اب دیکھیے اس کو اتنا نیچے لا دیا گیا ہے کہ ہم جو ہے گھر میں ذکر اللہ کے تعلق سے جو ہے تذکرہ بھی نہیں کرتے، بولتے بھی نہیں. کم سے کم فجر کی نماز کو گھر سے نکلتے وقت، عصر کی نماز کو گھر سے نکلتے وقت بول سکتے ہیں اپنے گھر والوں کے، نماز پڑھو اور ذکر کرو، اس کے بعد نماز پڑھو اور ذکر کرو، اس کے تعلق سے بولا جا سکتا ہے، بچوں کو سکھایا جا سکتا ہے، जिक्रुल्लाह समझ रहे हैं बहुत बड़ी चीज है। अभी छोटा बच्चा है, ये बच्चा मासूम है, इसको किस तरह से जिक्र सिखाया जाएगा। रसूल अकरम फरमा रहे हैं जब तुम्हारा बच्चा बात करने लगे तो उसे सबसे पहले जो है कलमे ला इला इला सिखा दो, फिर जिए वो, फिर वो जिए या मरे। रसूल अल्लाह फरमा रहे हैं कि अपने मरने वालों को ला इला इला की तलकीन करो, मतलब पैदा हुआ जब से मरा जब तक ला इला इला कहो। उसी को मैं इस्लाम ने जो है इल्लल्लाह तो इला इला ने कहा है। इसको इतना हार्ड लेके बैठे सब्जेक्ट बना दिए हैं जिक्रुल्लाह, जो बुनियाद है मेहदवियत की। जिस तरह जो है इस्लाम की बुनियाद जो है नमाज है, इस्लाम की बुनियाद नमाज है। रसूल ने फरमाया कि जो है इस्लाम नमाज जो है दीन का सुतून है, जिसने नमाज को कायम किया उसने अपने दीन को कायम किया, जिसने नमाज छोड़ी जो है उसने अपने दीन को मुनहदम कर दिया। एग्जैक्टली उसी तरह जो है महदवियत की बुनियाद सुतून जो है जिक्रुल्लाह है, जिसने जिक्रुल्लाह को कायम किया उसने महदवियत को कायम किया, और जिसने माजल्ला जिक्रुल्लाह को छोड़ा उसने गोया अपने जो है इस ईमान को, इस मजहब को जो है मुनहदम कर दिया। अब वो एक जो है बेजान जो है जिस्म की तरह है, जो सिर्फ फिर रहा है, जिसके अंदर जो है जान नहीं है। देखिए हम बच्चों को सिखाने का इतना वो करते हैं, हालांकि जो है हमारे घर में बच्चे हैं 2-3 साल के बच्चे हैं, जो हम मुझे मालूम है ये बच्चे जो है बड़ी आसानी के साथ जो है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जॉनी जॉनी यस पापा बोल सकते हैं सुन के खाली। उन्हें क्यों जो है जिक्रुल्लाह नहीं कराया जा सकता, मतलब सिखाया नहीं जा सकता भाई? कम से कम वो लोग थोड़े बैठ के करेंगे, लेकिन उनको जो है शुरू से ये अहमियत क्यों नहीं डाली जाती? ये बड़ों का देखिए कसूर है, और ये कसूर में जो है एक ज़माना जो है गुजर चुका है। ये खासतौर पे जो है बड़ों के वास्ते, माँ बाप के वास्ते, बड़ों के वास्ते जो है ये बात कह रहा हूँ, जहाँ तक ये अखीर की आवाज़ जा रही है। खुदा ताला पूछेगा जो जो है अपने बच्चों को जो है जिक्रुल्लाह की तलकीन नहीं कर रहे, जिक्रुल्लाह की अहमियत अपने घर वालों तक जो है पयाम नहीं पहुँचा रहे हैं, इसके बगैर नजात नहीं है। याद रखिए अब हम समझ रहे हैं इतनी आसानी से जो है बख्शे जाएंगे। इमामना मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम से जो है जूती तलब की गई तो इस्लाम ने फरमाया कि लो और बरकत के वास्ते घर में मत रखो। खुदायत अगर बंदा अपनी बंदा मोहब्बत में अपनी चमड़ी भी उतार के अगर तुम्हें दे देगा तो खुदा ताला इस बात पर खादिर है कि मेरी चमड़ी मुझे पहनाएगा, तुम्हारी चमड़ी तुमसे तुम्हें पहनाएगा और तुमसे तुम्हारा अमल पूछेगा। हम लोग समझ रहे हैं मामला बहुत आसान है। खुदा ताला के हुजूर, अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर क़यामत के दिन जब ठहरा जाएगा और जब अल्लाह ताला खुद सवाल करेगा तो रिवायतों में आया है कि उसके सवाल और जवाब से, जिस बंदे से सवाल किया जा रहा है वो ये कहेगा कि इस सवाल और जवाब से बेहतर है कि जो है मैं दोजख में चला जाऊँ। खुदा ताला के हुजूर ठहर कर जवाब देना इतना आसान नहीं है। ये ज़िंदगी जो है खेल नहीं है, एक ही बार आपको जो है ज़िंदगी अता की गई, 60, 70 साल, 80 साल, 100 साल की जो है एक ही बार जो है ज़िंदगी अता की गई, जो दोबारा मौका नहीं मिलेगा। लायानी चीज़ों में, बेहुदा चीज़ों में जो है ज़िंदगी गुजारी जा रही है, और फिर जो है नारा है अपने महदबी होने का। हम समझ रहे हैं थोड़े बहुत ज्यारतान कर लेके, थोड़े बहुत नमाजें पढ़ लेके, बहरिया मगर अटेंड कर लेके जो है आप अपने आप को महदबी होने का दावा कर रहे हैं। वहाँ तो जो है इमामना मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम जिक्र कसीर करने वाले को जो है मोमिन नाकिस कहते हैं। अभी कच्चा मोमिन है, जो जिक्र दवाम करेगा 24 घंटे जो जिक्र करेगा वो मोमिन कामिल है। मैं इस्लाम के पास तो नजात ही नहीं है बगैर जिक्र कसीर के, बगैर अमल के। हम कम से कम जो है इन औकात की, इस जिक्र का तो जो है चर्चा तो कर सकते हैं हमारे घर में। क्या हमारे पास खसूसियत यही है भाई? फिर वरना मैं इस्लाम, अगर सिर्फ नमाज रोजा ज़कात वगैरह आज की बात अगर रहती तो मैं इस्लाम का आना फिर किस लिए था? मैं इस्लाम ने यह फरमाया कि बंदे को खुदा ताला ने अहकाम विलायत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है इजहार के वास्ते, मफहूम में कह रहा हूँ, इस्लाम का फरमान मफहूम है उसका, उसके इजहार के वास्ते जो है बंदे को भेजाया है। जो विलायत के जो अहकाम है उसके वास्ते मैं इस्लाम ने जो है हमें जो मैं इस्लाम को यहाँ पे आना हुआ है। अब अगर देखिए जो ले दे के जो एक फजर के बाद से तुलू आफ्ताब का वक्त और असर से और मगरिब तक का भी जो वक्त हमारे हाथ लगाता, अभी भी जो देखने में आता, अभी भी जो थोड़े बहुत लोग जो जिक्र में बैठते हैं वो भी अब गिने चुने हो चुके हैं, मस्जिदें खाली और वीरान हैं। हम क्या कम से कम इन औकात की तो पाबंदी नहीं कर सकते? कम से कम भाई, कम से कम इन औकात की पाबंदी, क्या इतने गए गुजरे हैं? क्या जवाब देंगे? मैं आपको इस वास्ते से ये दो बातों की बात कर रहा हूँ कि ये दो वक्त की जो बात कर रहा हूँ, फजर के बाद से तुलू आफ्ताब तक एक आधा घंटा और असर से मगरिब तक, क्योंकि फिर भी इन औकात की भी अहमियत जो है कुरान मजीद में और अहादीस में जो है मिलती है। अल्लाह फरमा रहा है कबल तुलू शम्स, मतलब सूरज के तुलू होने से पहले और गुरूब होने से पहले उसकी तस्बीह बयान करो। तो इन औकात में क्या हम कम से कम आधा घंटा जिक्र में नहीं बैठ सकते? अपने घर वालों को ताकीद करना नहीं करना वो अल्लाह की तौफीक के ऊपर है, वो अल्लाह उनकी जस्तजी पर अल्लाह डालेगा। हम कम से कम जो है इसका चर्चा नहीं कर सकते? कितना देखिए हम गए गुजरे हो चुके हैं, कहाँ से कहाँ गिर चुके हैं। तो बहरहाल इन औकात की काफ़ी सख्ती से जो है हमारे पास पाबंदी है, बगैर इसके नतीजे चारा नहीं है, यही जो है सब कुछ है। ज़िक्रुल्लाह ही जो है मैदवियत की जो है बुनियाद है, यही सुतून है, इसी के ऊपर जो है हमारा दीन टिका हुआ है, बगैर इसके जो है कोई चारा नहीं है। ये ज़िक्र कसीर का तरीक़ा था जो इमामना महदी मौऊद अलैहिस्सलाम के दायरे में अमल होता था। हमारे भाइयों को सबको वाकिफ़ होने के वास्ते जो है आपके वास्ते जो है बोर्ड पे जो है लिख के लगाया गया, बच्चों को और सबको मालूम होने के वास्ते, औरतों को भी जो है लेडीज़ को सबको मालूम होना कि इस्लाम के पास क्या तरीक़ा था ज़िक्र का। इतना जिक्र में वो लोग जो है बैठते थे, वो मालूम होने के वास्ते, वाकिफ़ कराने के वास्ते जो है आपके वास्ते जो है यहाँ पे लिख के लगाया गया। इंशाल्लाह जो इसकी फ़ोटो भी जो आपको इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे आ जाएगी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, जो इससे पहले देखिए आपको बता दिया गया ज़िक्रुल्लाह की फजीलत, इतनी अहम तरीन फजीलत ज़िक्रुल्लाह की कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साफ फरमा चुके हैं कि तमाम आमाल में सबसे अफजल जो अल्लाह के पास जो सबसे पसंदीदा है वो ज़िक्रुल्लाह ही। आप सोना चांदी बांटने से अफजल, रसूलुल्लाह के फरमान में से कह रहा हूँ, सोना चांदी खैरात करने से बेहतर ज़िक्रुल्लाह है, जिहाद लड़ने से बेहतर ज़िक्रुल्लाह है। यहाँ तक कि जो है रसूलुल्लाह फरमाते हैं तुम दुश्मनों का कत्ल करो और वो तुम्हारा कत्ल करे, मतलब जो है जान देने से भी ज़्यादा शहीद होने से भी जो है अफजल ज़िक्रुल्लाह है। फिर हमने जो है मज़ीद उसके आगे सुना कि कौन सा ज़िक्रुल्लाह अफजल है, ला इलाहा इल्लल्लाह के ताल्लुक से आपने जो है पिछली हदीस में सुना है कि तमाम आमाल में, यहाँ तक कि आपने मूसा अलैहिस्सलाम की वो रिवायत सुनी है जब अल्लाह ने उनको फरमाया कि अगर मेरे सिवाय जो कुछ के ज़मीन व आसमान में, सातों ज़मीन सातों आसमान में वो पल्ले में रख दिया जाए और ला इलाहा इल्लल्लाह को एक पल्ले में रखे तो ला इलाहा इल्लल्लाह का पल्ला भारी होगा। इमामना महदी मौऊद अलैहिस्सलाम से जो तमाम कुरान मजीद की मुराद को एक जुमले में बयान करने को कहा गया तो आपने फरमाया कि कुरान मजीद, तौरात, ज़बूर, इंजील, बल्कि तमाम सहाफ़े आसमानी की मुराद को एक जुमले में कहता हूँ, वो है ला इलाहा इल्लल्लाह। और उसी को इमामना महदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने बड़े ही प्यारे तरीके से अल्लाह ताला के हुक्म से, इमाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से हमें जो है इल्लल्लाह तू है और ला इलाहा नहीं की जो है तरीके से जो है जिक्र करने को कहा। ये ला इलाहा इल्ला ही का जिक्र है। कोई आप एक सांस में जो है तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद का जो है दौर कर रहे हैं, अल्लाह की मुराद जो निचोड़ है कि सिर्फ वही है, उसकी मुराद को जो है आप हर सांस में जो है बसा रहे हैं, उसकी कितनी अहमियत है। ला इलाहा क्या एक तारुफ आपने सुना है कि ला इलाहा इल्लल्लाह ईमान को इस तरह उगाता है जिस तरह जो है पानी सब्जी को उगाता है, रसूल अल्लाह ने फरमाया है। और साथ ही साथ आका ने फरमाया कि जो है हर चीज़ का एक साइकिल होता है, एक साफ करने वाली चीज़ होती है, और जो है दिल का साइकिल ला इलाहा इल्लल्लाह है, ये जो है पॉलिश है, साफ़ करने वाली चीज़ है आपके दिल को। और यहीं पर जो है आपको अल्लाह ताला का दीदार, और ये तमाम करना है आपको अल्लाह के दीदार के वास्ते, सिर्फ और सिर्फ उसकी रज़ा, उसकी खुशी, उसकी ज़ात और उसको देखने के वास्ते जो है तन मन धन हर चीज़ के साथ जो है अल्लाह ताला के वास्ते जो है डूबना है, तभी जो है अल्लाह ताला उसके दीदार से जो है उसके फजल से जो है मुशर्रफ करेगा। बहरहाल इन औकात की पाबंदी के साथ ताल्लुक से भी आपने सुना, ला इलाहा इल्लल्लाह के जिक्र के ताल्लुक से भी सुना। अब ये जो जिक्र जो हमारे पास जो सांस से किया जाता है उसके ताल्लुक से जो है आपके सामने बंदगी में सिद्दीक शाह खुदमीर सिद्दीक विलायत हामिल बार अमानत रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो इमामना महदी मौऊद अलैहिस्सलाम के खलीफे दुआ में आपने एक रिसाला लिखा है अलमेयार, उसमें से जो ज़िक्रुल्लाह के ताल्लुक से जो लिखा गया है वो आपके सामने शरह अकीदे शरीफा से पढ़ा हूँ। खूमिया साहब पालनपुरी ने जो है उसी में से जो है एक्स्ट्रा यहाँ पे डाला है, क्योंकि हज़रत खूमिया साहब पालनपुरी ने थोड़े से जो है उसके साथ साथ जो है हाशिए थोड़े से कमेंट्री वगैरह साथ में लिखी है, वो पढ़ना आपके यहाँ से जो है आसान होगा हमारे लिए समझने के लिए, इसीलिए जो है उस किताब में से पढ़ रहा हूँ, बंदगी में रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की किताब अलमियार में से है। उस वक़्त जो है गैर जो है मैदवियों पर एतराज़ करते थे कि मैदवियों ने नाक को जिगर का आला बना के रखा है, नाक से जो है हमारे पास जिक्र, चूँकि सांस, अब जाहिर सी बात है सांस या मुंह से लेते हैं या नाक से लेते हैं, तो उन्होंने जो है ताने देते थे, मजाक उड़ाते थे कि जो है मैदवियों जो है नाक को जो है जिक्र का आला बना के रखें। तो बंदगी में जो है जवाब लिख रहे हैं, बगैर इसके देखिए जिक्र दुआ कर ही नहीं सकते, जिक्र दुआ अल्लाह का हुक्म है, तो बंदगी में साफ फरमा रहे हैं जिक्र दुआ जो किया जाता है वो सिर्फ सांस ही के जरिए जो है किया जा सकता है, वरना अगर ज़ुबान से करना तो खाते पीते वक्त जो है नहीं कर सकते, बातचीत के वक्त जो है नहीं कर सकते, खुदा ताला का उधर हुक्म है करने का, तो जो करना है वो सांस ही से करना है, और सांस के जो है ये दो रास्ते हैं। तो बहरहाल बंदगी में सिद्दीक शाह खुदमीर सिद्दीक विलायत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिखे हुए रिसाले से जो है आपके सामने पढ़ रहा हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बंदगी में लिखते हैं बिस्मिल्लाह कि ज़िक्रुल्लाह फ़र्ज़े दवाम है, जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है फ़ज़्कुरुल्लाह क़ियामं व क़ुऊदं व अला जुनूबिकुम, खड़े और बैठे और लेटे, यानी हर हालत में अल्लाह की याद करते रहो, ज़िक्रे दवाम ऐसा फ़र्ज़ है जो नफ्स यानी सांस की पासदारी किए बगैर अदा हो ही नहीं सकता, सांस की हिफाजत किए बगैर अदा हो ही नहीं सकता। और सांस नाक से मुकैद नहीं है बल्कि वो तो बदन के तमाम आज़ा में सारी है यानी जारी है। मिन जुमला दीगर वजूहात के ये भी एक वजह है कि सालिकान राह तरीक़त व तालिबान ज़ात मुतलक यानी जो अल्लाह के तालिब हैं ज़िक्र खफ़ी को सब किस्म के अज़कार से अफजल बताया। याद रखिए हमारे पास जो इस्लाम ने जो ज़िक्र का तरीक़ा बताया उसे ज़िक्र खफ़ी कहते हैं, जो तमाम अज़कार में जो है सबसे अफजल है। बल्कि जो है औलिया इकराम के पास की किताबों में आपको मिलता भी है, हदीस भी मिलती है कि रसूलल्लाह ने फरमाया कि अफजल ज़िक्र ज़िक्र खफ़ी, ज़िक्र खफ़ी जो है सबसे अफजल है। तो बंदगी में आगे लिखते हैं कि ज़िक्र खफ़ी सबसे अफजल है क्योंकि ज़िक्र खफ़ी और पास अनपास, पास अनफास मतलब सांसों की हिफाजत, हम जो जिक्र करते हैं ये पास अनफास ही का है, इसी से जो है आपको जिक्र खफी अता होता है। जिक्र खफी क्योंकि जिक्र खफी और पास अनफास के बगैर जाकिर यानी मैं जो जिक्र करने वाला जाकिर का वजूद रिया और खुदबीनी से ना तो पाक हो सकता है और ना जिक्र दवाम हासिल हो सकता है। यानी बगैर सांसों की हिफाजत के हम जो करना चाह रहे हैं, जो हासिल करना चाह रहे हैं, हमारा वजूद जो है खुदबीनी से खुदनुमाई से अपने आप को देखने से अपने आप को मेटना और जो रियाकारी होती है इसको अगर पाक करना है तो बगैर सांसों की हिफाजत की जो है नहीं हो सकता और जिक्र दवाम हासिल नहीं हो सकता। क्योंकि अगर जिक्रुल्लाह महज ज़ुबान से किया जाए तो जिक्र जब महज जिक्रुल्लाह अगर ज़ुबान से किया जाए तो जब भी बात करने और खाने पीने में मशगूल हो जाते हैं और जब किसी काम में मशगूल हो तो याद इलाही नहीं कर सकते, बस बेखुदा रहने से उसका शुमार गाफिलों में हो गया। हालांकि गफलत मोमिन की सिफत नहीं है बल्कि उन लोगों की सिफत है जिनकी नस्बत अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है। आइए कुरान मजीद की आयत है कि आप फरमा रहे हैं कि अगर आपको जो है जिक्र हमेशा का जिक्र करना है तो आपको जो है सांस ही से करना है, वरना अगर जो है आप खा रहे हैं पी रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं तो जिक्र बरकरार नहीं रह सकता। उस वक्त अगर आप जो है जिक्र जो ज़ुबान से जिक्र करने वाला है वो खा लेगा पिएगा, अब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ तो जो है मैं जिक्र से गाफिल हो जाऊंगा। और जो ये गफलत है इसके ताल्लुक से देखिए खुदा ताला कुरान मजीद में क्या फरमा रहा है, मतलब खुदा को भूलना, इसी को मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने जो है गफलत को हराम फरमाया। गफलत हराम है मतलब खुदा को भूलना हराम है। खुदा ताला कुरान मजीद में फरमाता है सूरह एराफ़ की आयत है, तर्जुमा पढ़ रहा हूँ, कि हमने बहुत से जिन्नात और इंसानों को दोजख के लिए पैदा किया है, उनके दिल हैं लेकिन किसी हकीकत को पा नहीं सकते, आंखें हैं लेकिन देख नहीं सकती मतलब अल्लाह को देख नहीं सकती, और उनको कान है लेकिन सुन नहीं सकती मतलब हक सुन नहीं सकती। ये लोग उलाय का कलनाम, ये लोग चौपायों के मानिंद है, जानवरों के मानिंद है, बलहुम अजल्ला यानी बल्कि उससे भी ज्यादा गुमराह है, यही लोग गाफिलीन है, उलाय का हुमुल गाफिलून यही लोग गाफिल। तो जो अल्लाह का जिक्र भूल चुके हैं अल्लाह कह रहा है कि ऐसे लोगों को अल्लाह ने जो है बहुत सारे लोगों को पैदा किया है जिनको अल्लाह ने जो है कान भी दिए हैं, दिल भी दिए हैं, आंख भी दिए हैं, लेकिन ये लोग जो है ना देख सकते हैं ना सुन सकते हैं और ना जो है दिल से अल्लाह का जिक्र कर सकते हैं, यही लोग जो है दोजख के हवाले कर दिए जाएंगे। गफलत की सिफत बंदगी में लिख रहे हैं। आगे बंदगी में लिखते हैं कि इमाम ज़ाहिद रहमतुल्लाह अलैह अपनी तफसीर में लिखते हैं कि हुसूल मकसूद के लिए यानी जो आपको मकसद जो हासिल करना जो आपका ऑब्जेक्टिव है अल्लाह का दीदार, उसूले मकसूद के लिए तमाम फराइज में जिक्रुल्लाह बड़ा फर्ज है, सबसे बड़ा फर्ज है। जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है अकीम सलात इन सलाता तनहा अनिल फहशा वल मुनकर वला जिक्रुल्लाह ही अकबर यानी नमाज पढ़ते रहो बेशक नमाज बेहयाई और ममनुआत इन तमाम बुरे कामों से जो है नमाज रोकती है और अलबत्ता अल्लाह ताला का जिक्र सबसे बड़ा है। कुरान मजीद फरमा रहे फिर आगे बंदगी में फरमाते हैं कि ऐ अजीज हमें कह रहे हैं, देखिए बंदगी में आपको कह रहे हैं ऐ अजीज याद रखो कि जिक्र दवाम यानी हमेशा के जिक्र के बगैर तज़किए नफ्स और तजरीद व तफरीद हासिल नहीं हो सकती। आपको जो नफ्स पाक होना है वो हरगिज़ जो है हासिल नहीं हो सकता बगैर जिक्र दवाम के, और ना दिल की परागंदगी ये जो दिल में गंदगी हो चुकी है वो दिल की परागंदगी दफा होकर दिल में जमीयत पैदा हो सकती है, ये जो है बगैर जिक्र दवाम के हासिल नहीं हो सकती। और बेचारा सालिक यानी जो हम बेचारे हैं सालिक शैतानी वसवसों से दूर नहीं हो सकता और नफ्स की ख्वाहिशों और आरजुओं से भी नहीं निकल सकता। बग़ैर 24 घंटे के जिक्र के जो है हम शैतानी वसवसों से नहीं बच सकते, नफ्स की ख्वाहिशों से नहीं बच सकते। अब आपके सामने जो है जिक्रल्लाह के बारे में कहा जा रहा है, आपके सामने जो है तरके दुनिया के बारे में, दुनिया की मजम्मत की जा रही है, ख्वाहिशात को रोकने की बात की जा रही है, तवक्कल की बात की जा रही है, अल्लाह के इज़्ज़त की तलब की बात की जा रही है, ये आपको उस वक्त तक हासिल नहीं हो सकता जब तक आपको जो है जिक्रल्लाह हासिल ना हो। साफ बंदगी में फरमा रहे हैं कि जो है आप शैतानी वसवसों से निकल ही नहीं सकती। आगे बंदगी में लिखते हैं कि इसलिए तालिब हक को याद खुदा में, इन्हें अल्लाह के जिक्र में इस कदर मुआजिबत करनी चाहिए, मजबूती करनी चाहिए कि वो किसी भी वक्त और किसी हालत में भी जिक्रल्लाह से गाफिल ना रहे। चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, कहते सुनते, बल्कि कुल हरकत व सकनात में उसको हाजिर वक्त रहना चाहिए, यानी देखिए प्रेजेंट में रहना चाहिए, अल्लाह के जिक्र में रहना चाहिए, ताकि कोई साथ यानी कोई लम्हा बातिल ना गुजरे, बेकार ना गुजरे, बल्कि वाकिफे दम रहे। होता यही है, हम जो है सांस चल रही तो जो है भूल जाते, सांस चल रही सो आप चीज बातचीत चलती है, अभी भी आप सांस को भूले हुए, आप जैसे ही सांस को याद करेंगे आपको जिक्र आ जाएगा। वाकिफे दम रहना ये बहुत बड़ी पहचान है, ये क्लू दिया जा रहा है। वाकिफे दम के ऊपर जो है हमारे पास खास किताबों में जो है काफ़ी कुछ जो है लिखा हुआ है, दम से वाकिफ रहना, यानी दम चल रहा है उससे आप जो है वाकिफ रहना, वाकिफे दम रहे, वाकिफे दम, बल्कि वाकिफे दम रहे कि कोई दम गफलत में ना निकलने पाए, कोई दम जो है गफलत में ना निकलने पाए। जैसा कि अब आगे बंदी में लिख रहे हैं, जैसा कि हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुल्लु नफ्सु यखरुजु बगैर जिक्रुल्लाह फहुवा मैयतुन, जो दम यानी जो सांस जिक्रुल्लाह के बगैर निकलता है वो मुर्दा है। अब रसूल्लाह भी जो है साफ फरमा चुके हैं, सांस वो सांस जो बगैर अल्लाह के जिक्र के निकलती है वो मुर्दा है। आगे बंदगी में लिख रहे हैं कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दम की तरफ इशारा किया है, सांस की तरफ इशारा किया है, क्योंकि दम की पासदारी यानी हिफाजत किए बगैर जिक्र दवाम हासिल नहीं हो सकता। जिक्र दवाम मतलब हमेशा का आपको जिक्र हासिल होना है तो वो सांस ही से हासिल हो सकता है। आगे लिखते हैं, और तालिब खुदा व जोयाए ज़ात मुतलक, जो अल्लाह को ढूंढने वाला है वो ना तो मुर्दगी की सिफत यानी मरने की जो सिफत है उसे बाहर निकल सकता है, ना दिल से गफलत का पर्दा दूर हो सकता है। बगैर सांसों की हिफाजत किए कि जो है इस मुर्दगी से नहीं निकल सकते और गफलत से नहीं निकल सकते। आगे जो है बंदगी में जो है काफ़ी अच्छे अशार लिखे हैं, उसका तर्जुमा हजरत सैयद सादुल्लाह सिंह साहब ने जो है एग्जैक्टली उसका तर्जुमा जो है उर्दू में इस तरह से किया है कि मोती है कीमती तेरी उम्र अजीज की, सांसों कह रहे हैं कि बहुत कीमती मोती है, मोती है कीमती तेरी उम्र अजीज के, इन मोतियों का रह तू हमेशा निगहबान, इन कीमती दमों का है क्या नर्ख मुझसे सुन, नर्ख मतलब रेट, इसका प्राइस क्या है मुझसे सुन, बोल रहे इन कीमती दमों का है क्या नर्ख मुझसे सुन, कीमत है हर नफ्स की तेरे मुल्क दो जहां, एक नफ्स की कीमत जो है दोनों मुल्क है, दुनिया आखिरत पूरा मिला के जो है एक नफ्स की कीमत है। आगे लिखते हैं, मोती है कीमती तेरी उम्र अजीज के, इन मोतियों का रह तू हमेशा निगहबां, इन कीमती दमों का है क्या नर्ख मुझसे सुन, कीमत है हर नफ्स की तेरे मुल्क दो जहां, दुनिया से खाली हाथ न जा माल जमा कर, ये गंजिया मेरा है न कर उसको रायगा, गैरे खुदा के साथ तू रुखबत कभी न कर, यानी जो अल्लाह खुदा का गैर है अल्लाह के सिवाय जो है, गैरे खुदा के साथ तू रुखबत कभी ना कर, याद खुदा में रहे बदिल वो जा तू जाविदा, हमेशा जो है अल्लाह ताला की याद में रहो। ये जो है सांस के ताल्लुक से जो इसकी फजीलत बयान की गई है, मैं आखिर में जो है एक और एक हदीस कुदसी के साथ जो दूसरी किताब में उसके ऊपर जो इंशाल्लाह आज की तकरीर ख़त्म करूँगा जो सांस की अहमियत बताती, यहाँ पे सांस की अहमियत बताई जा रही है कि हर एक सांस की अहमियत जो है मुल्क दो जहां से दोनों जहां से जो है बेहतर है। आगे बंदगी में फरमा रहे हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमूदे में, जो हदीस अभी आपके सामने पढ़ी गई, फरमूदे में हिकमत ये है कि सांस दिल में व नेज मतलब और तमाम आज़ा में पहुंचता रहता है, सांस जो है हर जगह जो है जाती है, आपकी सांस आपके बाल बाल तक पहुंचती है, बस जब सांस जिक्रल्लाह के साथ तमाम बस जबकि सांस जिक्रल्लाह के साथ तमाम आज़ा में सरायत करता है तो जिक्र के फैज़ से असर हयात तमाम आज़ा में पैदा होता है और जाकिर के दिल में दरख ईमान उगाता है। तो मेहदवी जो है सिर्फ जुबान का जाकिर नहीं रहता, जो सांस जो जिक्र कर रहा है, जब सांस ले रहे हैं तो वो दिल में कह रहा है इल्लल्लाह तू है, और जब सांस छोड़ रहे हैं बगैर जुबान बुलाए कि वो कह रहा है ला इलाहा हु नहीं। इसकी जब प्रैक्टिस हो जाती है तो हर सांस जो अंदर जा रही है उसके पूरे एक एक बाल बाल को पहुंच रही है सांस, तो जो है बाल बाल को जो है वो हयात मिल रही है। आगे लिख रहे हैं, जैसा कि रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस तरह पानी सब्जी को उगाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह ईमान को उगाता है। ला इलाहा ईमान को एक करते करते जो है आप बुराइयों से हटेंगे और खुदा ताला के जो है करीब होंगे, करते करते जो है आप एकदम जो है झाड़ बढ़ नहीं जाएगा। आगे लिखते हैं कि ए अजीज, देखिए मैं बंदे फरमान, ए अजीज दोस्त, ए अजीज याद रखो कि जबकि हमारा मकसूद ये है, यानी हमारा एम एम्बिशन ये है कि दमों की हिफाजत की वजह से जिक्रला दिल में खरार पकड़े, देखिए ये दिल में जो है वो पकड़े जाना है, वो पकड़ नहीं आ रही, होता यही है, हम जिक्र कर रहे हैं और दिल की तवज्जो के साथ जो है जिक्र कर रहे हैं लेकिन वो दिल उसे पकड़ता नहीं, पूरा खुलूस के साथ जाना। आप दो पत्थर लेंगे, देखिए बचपन में हम लोग खेलते थे, दो पत्थर लेके मारे तो जो है चिंगारी आती, तो जब परफेक्ट मैच होता है तभी जो है चिंगारी निकलती, परफेक्ट मैच पे जो है चिंगारी निकलती। मैं इस्लाम भी वही फरमाते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोमिन के दिल पे किसी कदर इतना ठहर जाए कि जो है मूंग का दाना जो है गाय की सींग पे मारे और आवाज कर फ्रैक्शन हो सके तो उसका काम तमाम हो जाए, तो वो परफेक्ट जब जाके दिल पे लगेगा तो वहां से जो है वो रिदम बन जाएगी, अब उसके बाद जो है दिल छोड़ेगा नहीं, अब आप खाओ पियो कुछ भी करो दिल में जो है वो जिक्र चलते रहेगा। वो परफेक्ट मैच के वास्ते जो है आपको हमेशा जिक्र करते रहना है, वो एक मार के वास्ते जो है तमाम खुदा के सिवाय जो कुछ के इस दिल में है उसको जला दे, उसके वास्ते आपको ये जो है मेहनत करना है। तो बंदे यहां फरमा रहे कि ए अजीज याद रखो, मतलब ये जो हम जो दमों की जो मेहनत कर रहे हैं जिक्र की, जो दम से ले रहे हैं सांस से, उसका मकसद ये है, उसकी हिफाजत की वजह ये है कि जिक्रुल्लाह दिल में खरार पकड़े और सांस अल्लाह की याद के साथ अंदर और बाहर आता जाता है चाहे मुंह से या नाक से, इसलिए ये दोनों दम आमद, ये दोनों दम की यानी सांस की आमद और रफ्त के रास्ते हैं, तो सिर्फ दम के आने जाने की वजह से नाक जिक्रुल्लाह का वास्ता और जरिया नहीं हो सकती, जैसा कि वो एतराज कर रहे थे, क्योंकि दम मुतलक है और सहाबाए सैयद मोहम्मद मेहदी अलैहि सलाम का मकसूद यही है कि दमों के जतन करते रहने से अल्लाह की याद दिल में जम जाए और जिक्रुल्लाह की बरकत से दिल को इत्मीनान हासिल हो। मकसद यही है कि जो है दिल में अल्लाह की याद जम जाए और जिक्रुल्लाह हासिल, जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है कि अला बज़िक्रिल्लाही तत्मईनुल क़ुलूब, और उनके दिलों को खुदा की याद से तसल्ली होती है, और सुन रखो कि जिक्रुल्लाह से दिलों को तसल्ली होती है, सूरह रात में आयत है। आगे लिख रहे हैं, अब ये समझना चाहिए कि जिक्र क्या है और मजकूर किसे कहते हैं। जिक्र उस जिक्र मतलब आप जो कर रहे हैं, जो जिक्र करने वाला है जाकिर है और जिसका जिक्र किया जा रहा है वो मजकूर है। अब ये समझना चाहिए कि जिक्र क्या है और मजकूर किसे कहते हैं। जिक्र उसका नाम है, असल जिक्र जो है बंदे का, देखिए बड़ी अच्छी बात पूरी शरीयत की पासदारी के साथ जो है कह दी जा रही है, जिक्र उसका नाम है कि उसके वास्ते से उसके जरिए से मां सिवा अल्लाह का वजूद मिट जाए, जो कुछ के अल्लाह के सिवा उसका वजूद मिट जाए। नगदे हस्ती महुकुंदर ला इलाहा ताबियाबी दारे मुल्क के बादशाह, यानी अपनी हस्ती को ला इलाहा इल्लल्लाह में महू कर दे, मेट दे, ताकि तुझे जो है अपने मालिक का बादशाह का जो है दरवाजा मिल जाए, उसका जो है बादशाह का जो है महल मिल जाए। तो आगे लिखते हैं मंदगी मियां, और जाकिर को जो जिक्र करने वाला है बजुज मस्कूर के यानी बजुज खुदा के किसी बात की कुछ खबर ना रहे, ना अपनी ना अपने जिक्र की ना गैर के वजूद की, बल्कि बजुज खुदाए वाहदुल अहद के कुछ भी बाकी ना रहे, जैसा कि अल्लाह फरमाता है वस्कुर रब का इजा नसीता, यानी कर अपने रब का जिक्र जब तू भूल जाए, अल्लाह कहते जब तू भूल जाए मतलब जब तू जो है खुद को भूल जाए तब अल्लाह के पास जो है उसका जिक्र कायम हुआ। हम समझ रहे हैं अल्लाह का जिक्र हम कर रहे हैं, करते करते जो है खुद को भूल गए तब जो है अल्लाह के पास वो अल्लाह का जिक्र हुआ, तब तक जो है वो सिर्फ मेहनत है। इस तालुक से जो है इंशाल्लाह अगली नशिस्त में बंदगी में शाही नेमत रजी अल्लाह तआला का जो है रिसाला पढ़ा जाएगा, उसमें जो है इस हदीस के तालुक से भी जो है कहा गया है। यहाँ पर जो है बंदगी में रजी अल्लाह तआला आगे मुख्तसर सा जो है आप एक दो अशार के बाद लिखते हैं कि मजकूर तलब चे खाही या जिक्र इयस हमा खुलासा फिक्र, यानी जो मजकूर है उसको तलब कर, तुझे जो है जिक्र से असल क्या है, मजकूर तुझे चाहिए और यही जो है तमाम जो है खुलासा है जो आपके सामने फिकर रखी गई है। बहरहाल यहाँ पे जो है थोड़ा सा उसमें से जो है एक्सट्रैक्ट जो है आपके सामने जो है पढ़ा गया है। तो सांसों की हिफाजत का जो है बंदगी मियां ने जो है फरमाया है, इतनी अहम ये चीज़ है बंदगी मियां सैयदना शायख उन्नी सिद्दीक़ क़िबलातुल्लाह की रिसाले से जो आपके सामने पढ़ी गई है, तमाम की हिफाजत ही से जो है आपको ज़िक्र दवाम हासिल होता है। और वो करना यही है बगैर ज़ुबान को हिलाए कि जो है हमारे पास दिल में जो है अल्लाह ताला का जो है जिक्र किया जाता है। सांस अंदर लिए तो दिल में जो है इल्लल्लाह तू है कहते हैं, और सांस बाहर छोड़े तो जो है दिल ही में जो है ला इलाहा हू नहीं कहते, इल्लल्लाह तू है मतलब सिर्फ अल्लाह तू है। ला इलाहा में आप जो है तमाम जहाँ की नफी कर रहे हैं मतलब कुछ नहीं, और हूँ नहीं यानी मैं भी जो है नहीं हूँ, ये कह के जो है आप अपने भी जो है वजूद को मिटा रहे हैं। तो ये सुबह शाम जो जिक्र में बैठते हैं वो प्रैक्टिस करते करते आप इतने हावी हो जाते हैं कि उसके बाद जो है आप काम भी कर रहे हैं, खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तभी भी जो है आपका वो जिक्र जो है जारी होता है। और ये सांस इतनी अहम चीज़ है, इतनी कीमती चीज़ है जो बंदगी मियां ने जो अपने अशआर में कहा है, इसका तर्जुमा आपके सामने कहा गया था कि एक सांस जो है दोनों जहाँ की जो है कीमत से जो है अफजल तरीन है। एक और एक हदीस कुदसी, हदीस कुदसी जिसमें जो है खुद अल्लाह ताला जो है फरमा रहा। इन दमों के ताल्लुक से देख लीजिए हम कितनी बड़ी नेमत से जो है गाफिल हैं और कितना बड़ा जो है गुनाह कर रहे हैं। जो इस वक्त भी मैं भी जो है इस वक्त भी जो है इस गुनाह में हूँ, गफलत है शायद, इसी वजह से जो है बात असर भी नहीं करती होंगी क्योंकि जो है उस पर कायम नहीं है। देख लीजिए हदीस कुदसी में आया है जहाँ पर जो है ये इसका हवाला नहीं है बल्कि जो है एक किताब सदबरगे मतीन लिखी गई थी सैयद खुनमीर साहब मतीन के अशार है उसके अंदर, उसकी शरह जो है हज़रत खुमे साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह आखिर के जो है फेवरेट मुसन्निफ़ हैं, 100 साल पहले जो है वो गुजरे हैं, उन्होंने जो उसकी उनकी उस किताब में जो शरह की है साथ में कमेंट्स लिखे हैं, हर शेर के नीचे कुछ ना कुछ जो है अहादीस लिखे हैं। तो एक शेर के नीचे जहाँ पर जो है सांसों का जिक्र हो रहा है, शेर इस तरह से है कि पास अनफास की भी है क्या ही शान, हासिल कर ले मतीन उसका इरफान, फरमान इमाम है बताकीद इस पर दम और कदम की कर हिफाजत हर आन। यानी जो अल्लाह इस्लाम का फरमान है कि दम व कदम रा निगहदार, दम और कदम की जो है हमेशा हिफाजत करो, उसके ऊपर जो है निगाह रखो। तो उसकी शरह में हज़रत खुमिया साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह एक हदीस कुदसी लिखते हैं कि जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है, देखिए याद रखिए ये बात, ये हदीस मुबारक आप शायद गालिबन पहली मरतबा सुन रहे होंगे कि हदीस कुदसी है जहाँ पे अल्लाह फरमा रहा है कि ऐ इब्ने आदम तेरे दम, सांस, ऐ इब्ने आदम तेरे दम गोया के मेरे पैगंबर हैं, अगर तू मेरे जिक्र के साथ दम लेता है तो वो यानी दम तुझको मुझसे वासिल कर देगा, और अगर मेरे जिक्र के बगैर यूं ही दम लिए तो तूने मेरे पैगंबरों को कत्ल किया। हदीस कुदसी साफ है, देखिए इतनी हदीस है, आगे सब जो लिख रहे हैं वो आपके सामने आगे पढ़ रहा हूं, हदीस कुदसी फिर से पढ़ रहा हूं कि ऐ इब्ने आदम तेरे दम गोया के मेरे पैगंबर हैं, पैगंबरों के मान कह रहे हैं अल्लाह ताला, एक एक दम जो है पैगंबर के मानिंदे, अगर तू मेरे जिक्र के साथ दम लेता है तो वो तुझको मुझसे वासिल करेगा। पैगंबर का काम है अल्लाह से जो है वासिल कराना, तो मुझके वासिल मुझसे मिलाएगा वासिल करेगा, और अगर मेरे जिक्र के बगैर अल्लाह की हजार मरतबा पना मांगते हुए, और अगर मेरे जिक्र के बगैर यूं ही दम लिए तो तूने मेरे पैगंबरों को कत्ल किया। आगे हजरत लिखते हैं खुमिया साहब, यानी दम की इस कदर अहमियत बतलाई है कि एक एक दम गोया बमंजिले एक एक पैगंबर के हैं। अल्लाह ताला फरमाता है वब्तगु इलैहिल वसीला, यानी उसकी तरफ वसीला ढूंढो, यहाँ दम की हिफाजत को हुसूले दीदार के लिए यानी अल्लाह के दीदार को हासिल करने के लिए वसीला बनाया, जो राह तरीकत में गोया के बजाय बातनी पैगंबर के हैं, और ये तो यकीनी बात है कि बगैर वास्ते रसूल के कोई शख्स भी खुदा को हासिल नहीं कर सकता। सैयदना मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि दम व कदम रा निगहदार, और बंदगी मियां रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि जिक्र खफी और पास अनफास के बगैर जाकिर का वजूद रिया यानी दिखावा और खुदबीनी यानी अपने आप को जो देखते रहते हैं कि मैं कुछ कर रहा हूँ, से ना तो पाक हो सकता है और ना जिक्र दवाम हासिल हो सकता है बगैर दम की हिफाजत के जो है यासिन। देखिए जी इतनी बड़ी नेमत, मैं इस्लाम ने दम की जो तालीम दी है वो इतनी अहमियत है कि अल्लाह के पास जो है एक एक दम का मुकाम जो है एक एक पैगम्बरों का मुकाम। इसीलिए देखिए कुरान मजीद में याद आ रहा है कि अल्लाह ताला जो है बनी इसराइल के ताल्लुक से हमें जो है बार बार हमें कह रहा है, वो हो चुका है लेकिन बार बार कह रहा है कि बनी इसराइल तुम याद करो तुमने जो है कई पैगम्बरों का जो है कत्ल किया है, वो कह रहा है अल्लाह ताला कुरान मजीद में जो है बनी इसराइल को जो है याद दिला रहे कि तुमने उन्होंने जो है कत्ल किया था। अब क्या, अब हम जो पढ़ रहे हैं वो तो जो है बनी इसराइल के तलुक से है, यहूदी जो इस्लाम में कबूल नहीं किए, लेकिन वो कह रहा है खुदा ताला कि याद करो तुमने जो है कई पैगंबरों का जो है कत्ल किया है, बनी इसराइल ने कई पैगंबरों का कत्ल किया था, यहाँ पे भी जो है कत्ल हो रहा है। मसला जो है एक अलग तरीके से जो है यहाँ पे ये बात आ रही है, इसकी अहमियत से खुदा वास्ते जो है वाकिफ होना ज़रूरी है, कम से कम अहमियत से तो वाकिफ हो जाना कि मैं इस्लाम ने जो हमें इतनी निराली तालीम से जो है नवाजा है। इसीलिए पास अन पास जो कहा जाता है सांसों की हिफाजत, इसी से जो है जिक्र खफी जो है हासिल होता है, जिक्र दवाम हमेशा का जिक्र हासिल होता है। एक एक सांस आप जो जिक्र से जा रही है वो जो है एक पैगंबर है, पैगंबर का काम है खुदा से जो है वासिल कराना, तो इतनी बड़ी अहमियत है जब सांस जिक्र से लेते हैं तो वो जो है अल्लाह से जो आपको वासिल कराती है। देखिए इसकी इतनी बड़ी अहमियत है सांस की, कहा जाता है कि जो शख्स जिक्र नहीं करता, जिस्म की जो ग़िज़ा है अगर आप खाना पीना नहीं खाएंगे तो आप बिल्कुल जो है मुरझाए जाएंगे, पानी वगैरह नहीं डालेंगे तो झाड़ जिस तरह मुरझाया जाता है, फूल मुरझाए जाते हैं, उस तरह जो है अगर हम खाना पीना नहीं खाएंगे तो हमारा जिस्म किस तरह लागर हो जाता है, उसी तरह जो जिक्र नहीं करता उसकी रूह जो है लागर हो जाती है, वो बिल्कुल कतई इस तरह बिल्कुल जो है कमज़ोर हो जाती है। तो जिस तरह खाना पीना जिस्म की ग़िज़ा है उसी तरह जो है रूह जो अल्लाह का हुक्म है उसका नूर है, उसी से पूरा काम है, पूरा कनेक्शन जो पूरा काम है वो रूह ही से, और दम ही की ये फजीलत है। ऐसी कोई ख़ास बड़ी बात नहीं कह रहा आपके सामने, मामूली सी बात है लेकिन ख़ास ही है आपके सामने, इतनी बड़ी फजीलत जो इस्लाम ने जो दम की जो हिफाजत की बात की है। इंसान देख लीजिए जो हम बने हुए हैं मिट्टी से, इंसान मिट्टी का बना हुआ है और मिट्टी सबसे रफ़ चीज़ है, मिट्टी से जो लतीफ जो लाइट चीज़ है वो पानी, पानी से जो लतीफ चीज़ है वो हवा है, लाइट है उससे, हवा से जो लतीफ है वो आग है, आग से जो लतीफ है वो नूर है, और उसी नूर की जो है ये रूह बनी हुई। अब एक तरफ नूर है एक तरफ मिट्टी है, अल्लाह ने जो है एक जिस्म में जो मिट्टी का बना हुआ है और जो है रूह जो है नूर की बनी हुई है, अब उस दोनों को जो है साथ में रखना है तो कोई बीच की चीज़ होना था सांस, ये बीच की चीज़ है, मिट्टी से लतीफ पानी, पानी से लतीफ हवा, हवा से लतीफ जो है आग, आग से लतीफ जो है नूर, तो बीच की चीज़ अल्लाह ने जो है ली, उसकी हिकमत है, बीच की चीज़ जो है दोनों को जो है जॉइंट कर दिया गया। इसीलिए जैसे ये सांस उखड़े, सांस हवा ही ना, सांस जैसे ही उखड़ेगी रूह निकल जाएगी, ये दोनों को पकड़ में रहना है तो सांस ही है। अब आपको रूह को कनेक्ट होना है तो आपके पास सिर्फ सांस ही, जिक्र आपका रूह तक जाके लगना है और रूह से खुदा को हासिल करना है तो आपको आपके पास सिर्फ सांस ही जरिया है। और मेरी मौऊद सलाम ने अल्लाह ताला का यह एहसान है कि अल्लाह के हुक्म से हर सांस में जो है हमें जिक्र करने की जो है तलकीन की है, मतलब जब तक तुम्हारी हयात रहे सांस, जब तक हम जब तक जी रहे हैं, जैसे ही सांस ख़त्म होगी जो है हम ख़त्म हो जाएंगे। एक रिवायतों में आया है कि जो है दिन और रात में जो है हम 24,000 मरतबा, बाज गया तो मैं कि 22,000 मरतबा जो है सांसें लेते हैं, तो 22,000 मरतबा जो है सांसें, तो जो आदमी जो प्रैक्टिस कर लेता है कम से कम, देखिए हम क्या, हम कम से कम इतने भी गए गुजर चुके हैं, कम से कम जो है हम खुद और अपने घर वालों को फजर की नमाज से तुलू आफ्ताब तक और असर की नमाज से मगरिब तक का जो है हम क्या जिक्र नहीं कर सकते, और क्या जो है अपने घर वालों को हुक्म नहीं दे सकते, क्या जो है जिक्रल्लाह के ताल्लुक से घर में चर्चा नहीं कर सकते। इसे इतना क्यों जो है बड़ा बना दिया जा रहा है, एक फलसफा, एक बहुत बड़ी जो है PhD बना दी जा रही है, बच्चा जो है बड़ी आसानी के साथ 2-3 साल में जो है अच्छे अच्छे पोएमा पढ़ सकता है, तो उन्हें क्या ये रट्टी नहीं मार सकता एक पोएम की तरह, इल्लल्लाह तो है ला इलाहा उन्हीं की तरह, वरना जो है हम ख़त्म हो जाएंगे और खुदा ताला के पास जो है पूछ होगी। ज़िक्रा की नहायत ही बड़ी अहमियत है, अल्लाह चाहा तो इंशाल्लाह अगली नशस्त में जो है बंदगी में शाही नेमत रज़ी अल्लाह तआला का रिसाला जो ज़िक्रा ही के ऊपर है, इश्क के ऊपर अल्लाह ताला के, इंशाल्लाह वो जो है आपके सामने पढ़ा जाएगा। वाखिर दानुल्लाहि रब्बिल आलमीन।